ईरानी संस्कृति और कला।
श्रोताओ, कार्यक्रम ईरानी संस्कृति और कला के कन्ने कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और अहमद अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में ईरानी वास्तुकला के एक और नमूने कारवानसरा या सराय के बारे में बताएंगे। आशा है पसंद करेंगे।
प्राचीन समय से मानव समाज में लोगों के बीच संपर्क और विभिन्न शहरों व गांवों के लोगों के एक दूसरे के यहाँ आने जाने की परंपरा चली आ रही है। इसी वजह से देश सड़क, पुल और मुसाफिरों की सुविधा की चीज़ों का निर्माण करवाते रहे हैं। ईरान में भी व्यापारिक व वाणिज्यिक केंद्रों के बीच काफिलों के निरंतर आने जाने की वजह से सराय वजूद में आई। ईरान में मोटर गाड़ी के आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय होने से पहले निर्धारित दूरी पर गांवों व शहरों के बीच सरायें बनाई जाती थीं। इन सरायों की संख्या या क्षेत्रफल काफिलों और वस्तुओं की मात्रा पर निर्भर होते थे। जेम्स डॉन सहित बहुत से इतिहासकारों ने इस बात का उल्लेख किया है कि पूरे ईरान में इतिहास के विभिन्न दौर में मार्गों के किनारे व्यापारिक व सैन्य लक्ष्यों के लिए सराय और किले बनाए गए। इन स्थलों में अब बहुत कम बचे हैं जिनकी मरम्मत हुई है और कुछ मार्ग बदलने या प्राकृतिक घटनाओं की वजह से तबाह हो गए। विभिन्न दौर में सराय मुसाफिर खाने का रोल भी अदा करती रही और मुसाफिर कभी कभी कुछ दिन इनमें ठहरते थे ताकि दूसरे काफिले के साथ आगे का सफर जारी रख सकें।
कारवांसराय शब्द कारवां और सराय से मिलकर बना है। कारवा का अर्थ सामूहिक रूप से सफर करना और सराय का अर्थ घर व मकान है। ये दोनों ही पहलवी भाषा के शब्द हैं। सराय उस स्थान को कहते हैं जहाँ काफिले कुछ समय के लिए ठहरते थे। ये इस्लामिक क्षेत्रों में सबसे बड़ी रहने की जगह समझी जाती है। इसे आमतौर पर चाकोर या आयताकार बनाया जाता था। कारवां सराय या सराय का प्रवेश द्वार बहुत बड़ा व ऊंचा होता था। प्रवेश द्वार और भीतर के आंगन के बीच ताकनुमा दालान होता था। आंगन के चारों ओर ऊंचा चबूतरा होता था। उस पर बरामदे बने होते थे जहां काफिले वाले अस्थायी रूप से आराम करते थे। इन्हीं बरामदों के पीछे कमरे होते थे जहां कारवां वाले एक या कई रात रुक सकते थे। इन कमरों में ज़रूरत की चीज़ें मौजूद रहती थीं।
दो मंजिला सरायों में निचली मंजिल में वस्तुएं रखी जाती और ऊपरी मंजिल में मुसाफिरों के आराम के लिए जगह होती थी। इसी तरह सराय में घोड़े और दूसरे जानवरों को रखने के लिए भी विशेष जगह होती थी। सराय के द्वार के दोनों ओर चौकीदार के लिए कमरे बनाए जाते थे। प्रायः हर सराय में आंगन के बीचों बीच कुआं होता था ताकि मुसाफिरों को पीने के लिए पानी मिल सके।
ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि ईरान में हक्कावनेशी शासनकाल में सराय का निर्माण शुरू हुआ। मशहूर यूनानी इतिहासकार हेरोडट अपनी किताब में ऐसी शरणस्थलियों के बारे में लिखते हैं जो हक्कावनेशी शासकों द्वारा शूश और सारदिस के बीच बनाई जाती थीं। इस इतिहासकार ने इस तरह की 111 इमारतों का उल्लेख किया है जो 2500 किलोमीटर के मार्ग में हक्कावनेशी शासनकाल की राजधानी और सारदिस शहर के बीच बनी थीं। इस मार्ग को तय करने में मुसाफिरों को 3 महीने का समय लगता था। मार्गों के बीच शरण स्थली की जरूरत, सुरक्षा काफिले और डाक की जरूरत की वजह से सराय का निर्माण जरूरी था।
अशकानी शासनकाल में ईरान में काफिले वालों और मार्गों में विस्तार को बहुत अहमियत दी गई और सिल्क रोड सहित अहम मार्गों पर अनेक सरायें बनाई गईं। सासानी शासनकाल में भी मार्गों का विस्तार हुआ। इस शासनकाल में मुख्य मार्गों के किनारे सराय बनाई गई और इस शासनकाल में बनाई जाने वाली सरायों के कुछ नमूने अभी मौजूद हैं, जैसे दैर गचीन सराय, रोबात, अनुशीरवान सराय, दरवाजे गच सराय और किनार सियाह सराय।
दरगाहचिन सराय तेहरान से कुछ दूरी पर स्थित है और ये राष्ट्रीय धरोहर में शामिल है। ये सराय लगभग 1800 साल पुरानी है। दरगाहचिन सराय को ईरान में सराय की माँ कहा जाता है, क्योंकि इस सराय में मुसाफिरों की ज़रूरत की सारी सुविधा मौजूद थी। चक्की, पिछवाड़े का आंगन, शौचालय और हम्माम मौजूद थे। बाद में इसमें मस्जिद भी बनाई गई।
दरगाहचिन सराय में 6 बुर्जियाँ हैं। इसे 4 ऐवानों वाली वास्तुकला के आधार पर बनाया गया है। ऐवान किसी इमारत के उस छतदार भाग को कहते हैं जो सामने से खुला होता है, उसमें दरवाज़ा और खिड़की नहीं होती और उसके सामने आंगन होता है, अर्थात ये दालान रूपी होता है। दरगाहचिन सराय 12,000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर बनी है। अतीत में इसमें 43 कमरे, शहनशीन, 18 अस्तबल और 2 भंडार कक्ष मौजूद थे। ये सराय अपने ऐतिहासिक महत्व के मद्देनज़र आज देशी विदेशी पर्यटकों के लिए दर्शनीय स्थल बन चुकी है।
इस्लामी शासनकाल में सराय के निर्माण व विस्तार में बहुत से तत्वों का रोल रहा है। इसमें मुख्य कारक धार्मिक, सामरिक व आर्थिक थे। यात्रा वृत्तांत, इतिहास और भूगोल की किताबों से हमें व्यापार, दर्शन, भ्रमण और सराय के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। ईरानी शायर व लेखक नासिर खुसरो अपने यात्रा वृत्तांत के लिए मशहूर हैं। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में अनेक सराय का उल्लेख किया है जिसमें वे सफ़र के दौरान ठहरते थे। मिसाल के तौर पर उन्होंने नाइन से तबस के सफ़र में, जिसके बीच में पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है, लिखा है, हम जुबैदा सराय पहुँचे जहाँ पानी का बहुत बड़ा भंडार है। अगर ये सराय और इसमें मीठा पानी न होता तो मरुस्थल को पार करना मुमकिन न होता।
इस्लाम के आरंभिक दौर में शासक सराय जैसी आम लोगों के इस्तेमाल में आने वाली इमारतों का निर्माण करवाते थे। 5वीं हिजरी कमरी शताब्दी बराबर 11वीं ईस्वी शताब्दी इस्लामी कलाओं में वास्तुकला के निखरने का दौर है। ज़्यादातर मस्जिदें और सरायें 2 ऐवान या 4 ऐवानों पर आधारित होती थीं। ये प्रक्रिया मंगोलों के हमले तक जारी रही।
अधिक समय नहीं बीता कि मंगोल शासक की बाद की पीढ़ियां ईरानी संस्कृति से प्रभावित हुईं और पूर्वजों के अनुभव से उन्होंने फ़ायदा उठाया। उन्होंने व्यापार, अर्थव्यवस्था और सराय के निर्माण पर ध्यान दिया और उनकी रक्षा के लिए विशेष बल नियुक्त किए। ख्वाजा रशीदुद्दीन फजलुल्लाह अनेक सराय के निर्माण सहित आम लोगों के इस्तेमाल में आने वाली इमारतों के निर्माण के लिए दुनिया में मशहूर हैं। मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांत में, जो उन्होंने ईरान के बारे में यज्द से किरमान जाने वाले मार्ग के बारे में लिखा है, यज्द बहुत बड़ा शहर है और इसके निवासी मुसलमान हैं। अगर वे यज्द से किरमान जाना चाहें तो उन्हें 8 दिन सफ़र करना पड़ता और एक मरुस्थल से गुजरना पड़ता, लेकिन मार्ग में मुसाफिरों के ठहरने के लिए 3 सराय हैं जिनसे रास्ता आसान हो जाता है।
इस बात में शक नहीं कि ईरान में सराय निर्माण का स्वर्णिम काल सफवी शासन काल को माना जाता है। इस शासन काल में देशी व विदेशी व्यापार बहुत फला फूला और ईरान में तीर्थ यात्रा के लिए सफ़र बढ़ा और विदेशी ईरान से होकर जाने लगे। मशहद में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा, करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और पवित्र नगर नजफ में हज़रत अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा और अनेक सरायें बनाई गईं जिनमें ज़्यादातर अभी भी बाकी हैं। सफवी शासन काल में चीन, भारत और यूरोप को वस्तुओं का निर्यात और ईरान की सीमा से बाहर व्यापार फैला।
इस तरह ईरान में सराय के वजूद को शुरू हुए 25 शताब्दियाँ गुजर रही हैं। अमरीकी ईरानविद प्रोफेसर आर्थर पोप सहित शोधकर्ताओं का मानना है कि ईरान में सराय का वजूद ईरानी वास्तुकला की बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि कहीं भी दुनिया में सराय वास्तुकला की वो उपयोगिता नहीं है जो ईरान में थी। इसके अलावा सराय सामाजिक दृष्टि से भी बहुत अहम है। उस समय विभिन्न इलाकों से सराय आने वाले मुसाफिर एक दूसरे के साथ लेन देन के अलावा एक दूसरे के रीति रिवाज और आस्था से भी परिचित होते थे।
फारसी साहित्य में शायरों व साहित्यकारों ने सराय का बहुत वर्णन किया है। उन्होंने अपने शेरों में इंसान को सराय में ठहरने वाले मुसाफिर से उपमा दी है और इस दुनिया को सराय कहा है। इन शेरों में इंसान को इस दुनिया पर रिझने से मना किया गया है और नश्वर दुनिया में जीवन को सराय में ठहरने वाला मुसाफिर कहा गया है। जैसा कि फारसी के मशहूर महाकवि सादी के एक शेर का अनुवाद है, इस सराय से दिल क्यों लगाएं जबकि साथी जा चुके हैं और हम बीच मार्ग में हैं, या उनके एक और शेर का अनुवाद है, हे मन इस सराय से नाता न जोड़ क्योंकि घर बनाना काफिले वालों की परंपरा नहीं है। श्रोताओं, कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।